अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। क्या एक ऐसे स्कूल की कल्पना की जा सकती है जहाँ बच्चे तो जाएं लेकिन उनके कंधों पर वो भारी बैग का बोझ ना हो, जहाँ क्लासरूम में किताबें नहीं बल्कि मिट्टी, पानी और आग से सीखने की पूरी आज़ादी हो, और जहाँ मतलब होमवर्क के लिए कोई स्क्रीन नहीं बल्कि आसमान को देखने का वक्त मिलता हो? सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन नोएडा में एक प्री स्कूल है, द नीम स्कूल, जो इसी सपने को आप कह सकते हैं हकीकत में बदलने का दावा कर रहा है। आज हमारे पास स्कूल की वेबसाइट से जुटाई गई सारी जानकारी है, उनका फिलॉसफी, उनका करिकुलम, एडमिशन का तरीका और हाँ, उनकी फीस भी। तो आज हम इसी स्कूल के मॉडल की गहराई से पड़ताल करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आधार पर ये किताब रहित शिक्षा का अनुभव आखिर देते कैसे हैं। चलिए इसकी पढ़ते खोलते हैं। तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो किसी का भी ध्यान खींचेगी। ये स्कूल खुद को नो बुक, नो बैग, नो स्क्रीन स्कूल कहता है। ये हमारी और आपकी स्कूली शिक्षा की यादों से तो बिल्कुल ही अलग है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा मार्केटिंग जैसा भी लग सकता है। क्या इसके पीछे कोई ठोस शैक्षणिक आधार है?
आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पहली नजर में ये एक गिमिक या मार्केटिंग टैगलाइन जैसा ही लगता है, लेकिन जब हम स्रोतों में गहराई से उतरते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे एक बहुत सोची समझी फिलॉसफी है। उनका मूल मंत्र है रटने वाली शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करना। वो मानते हैं कि बच्चे सीखना उतना ही स्वाभाविक रूप से महसूस करें जितना कि जैसे हम सांस लेते हैं। ये पूरा मॉडल खेल आधारित और अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर केंद्रित है, मतलब बच्चे करके सीखते हैं, सिर्फ पढ़कर नहीं।
ठीक है, तो ये करके सीखने वाली बात, इसको वो लागू कैसे करते हैं? यही पर शायद वो 5 तत्वों वाला ढांचा आता है।
बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं से ये पूरा मॉडल दिलचस्प हो जाता है,
जिसके बारे में वेबसाइट पर काफी कुछ लिखा है।
हाँ, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये 5 तत्व उनके पूरे करिकुलम के नींव है। हर तत्व एक खास तरह के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे पृथ्वी, इसका मतलब है स्थिरता, जड़ें और विकास। इसे बच्चे बागवानी करके, मिट्टी में खेलकर सीखते हैं। फिर आता है जल, मतलब प्रवाह, लचीलापन और भावनाओं को समझना। इसके लिए उनके पास खास वाटर अटेलियर्स है, जहां बच्चे पानी के साथ खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं।
अच्छा, पृथ्वी और जल तो समझ में आता है, लेकिन अग्नि, फायर, ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं लगता? मेरा मतलब है, वे इसे सुरक्षित और रचनात्मक तरीके से कैसे लागू करते होंगे?
ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ अग्नि का मतलब असली आग से नहीं है, नहीं, ये एक मेटाफॉर है, एक प्रतीक। इसका मतलब है बच्चे के अंदर की ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास, उसकी जिज्ञासा की ज्वाला। इसे वे आत्मखोज और ऐसी गतिविधियों के जरिए जगाते हैं जहाँ बच्चे लीडरशिप सीखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं।
अच्छा,
इसी तरह वायु का मतलब है गति, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, जो उन्हें बाहरी एयर ट्रेल्स में दौड़ने, भागने और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी देता है। और आखिर में आकाश यानी स्पेस, इसका मतलब है कल्पना, शांति और अनंत संभावनाएं। इसके लिए उन्होंने शांत, क्रिएटिव कोने बनाए हैं,
जिन्हें वो साइलेंट स्पेस कहते हैं।
बिल्कुल।
वाह, तो ये सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है बल्कि बच्चे के विकास के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं।
एग्जैक्टली, और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये ढांचा भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडिक नॉलेज सिस्टम से गहराई से प्रेरित है। वेबसाइट पर साफ लिखा है कि वे कहानियों, मूल्यों और प्रथाओं को हमारी अपनी सभ्यता की विरासत से लेते हैं। तो ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है बल्कि दिल और आत्मा का विकास भी है।
ठीक है, तो ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत गहरी और प्रभावशाली लग रही है, पर सवाल वही है, थ्योरी तो अच्छी है पर प्रैक्टिकल में क्या? एक 3 साल के बच्चे का दिन स्कूल में असल में कैसा दिखता है? क्या ये सब बस अनस्ट्रक्चर्ड केओस है या फिर दिन का कोई तय रिदम या रूटीन भी होता है?
नहीं नहीं, केओस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और सोचा समझा प्रवाह है। उनकी पूरी दिनचर्या इन्हीं 5 तत्वों के इर्द गिर्द बुनी गई है। जैसे दिन की शुरुआत होती है द सॉफ्ट अराइवल से। बच्चे सुबह सुबह अर्थ एट्रियम में आते हैं, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। यहाँ का माहौल शांत होता है ताकि वे आराम से दिन में ढल सकें, कोई हड़बड़ी नहीं।
ये तो आजकल के सुबह उठो और भागो कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। उसके बाद क्या होता है?
इसके बाद वे जाते हैं नेचर्स क्लासरूम में, जो कि असल में बाहरी एयर ट्रेल्स हैं।
ये वायु तत्व हुआ,
यहाँ वे प्रकृति की खोज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। फिर बारी आती है सेंसरी अटेलियर्स की। अटेलियर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है आर्टिस्ट का स्टूडियो। यहाँ वाटर और फायर अटेलियर्स हैं जहाँ बच्चे अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा को बाहर निकालते हैं।
मतलब ये अटेलियर्स उनके क्लासरूम है एक तरह से?
एक तरह से हाँ, लेकिन ये पारंपरिक क्लासरूम जैसे बिल्कुल नहीं है। ये रचनात्मक लैब की तरह है। और उनकी फिलॉसफी में एक बहुत जरूरी बात है, वे मानते हैं कि बच्चे का माहौल उसका तीसरा शिक्षक होता है।
तीसरा शिक्षक?
हाँ, पहला शिक्षक माता पिता, दूसरा स्कूल का गाइड या टीचर, और तीसरा खुद वो स्पेस जहाँ बच्चा सीख रहा है। दिन में एक साइलेंट स्पेस भी होता है जो आकाश तत्व से जुड़ा है। यहाँ बच्चे शांत रहते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। और दिन का अंत होता है कम्युनिटी सर्कल में, जहाँ सब साथ बैठकर कहानी सुनते हैं, अपने दिन के अनुभव शेयर करते हैं।
इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सीखना उनके लिए कोई काम नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सब सेंसरी एक्सप्लोरेशन और मोटर स्किल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो क्या वे कुछ अकेडमिक भी सीखते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना या गणित? बिना किताबों के ये कैसे संभव है?
बिल्कुल, उनका पाठ्यक्रम उम्र के हिसाब से विकसित होता है। प्री नर्सरी में फोकस सेंसरी एक्सप्लोरेशन पर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर किंडरगार्टन तक पहुंचते हैं, शिक्षा प्रोजेक्ट आधारित हो जाती है।
प्रोजेक्ट आधारित? जैसे
मान लीजिए उन्हें गणित सिखाना है, तो वे बच्चों को ब्लॉक एंड क्ले के साथ खेलने को देंगे और कहेंगे कि चलो एक शहर बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अनजाने में ही गिनती, आकार, पैटर्न और यहाँ तक कि बेसिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी सीख जाते हैं। कहानी सुनाना और सुनना उनके लिटरेसी प्रोग्राम का आधार है। वे कहानियों के जरिए अक्षर और शब्द पहचानना सीखते हैं।
और फिर उन्हें परखा कैसे जाता है? जब कोई पारंपरिक परीक्षा या टेस्ट ही नहीं है, तो माता पिता को कैसे पता चलता है कि उनका बच्चा प्रगति कर रहा है?
उनका मूल्यांकन का तरीका भी उनकी फिलॉसफी जैसा ही है।
मतलब
निरंतर और अवलोकन आधारित। टीचर्स बच्चे के हर पहलू पर नजर रखती हैं। उसकी जिज्ञासा कितनी बढ़ी, वो दूसरों के साथ कैसे घुल मिल रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। वे बच्चे की प्रगति को एक कहानी या नैरेटिव के रूप में रिकॉर्ड करती हैं, ना कि ABC ग्रेड के रूप में।
अच्छा।
और दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दिशा निर्देशों के भी बहुत करीब है, जो रटने की बजाय समग्र विकास पर जोर देती है।
ये सब सुनकर लगता है कि स्कूल में एडमिशन लेना सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि पूरे परिवार का एक बड़ा फैसला होगा। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप सुबह बच्चे को ड्रॉप करके बस भूल जाएं। क्या माता पिता की भागीदारी के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा है?
उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि इसे अपने मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया है। उनकी एक बहुत ही अनोखी सुविधा है जिसके बारे में वेबसाइट पर बताया गया है, Cowork@School।
Cowork@School मतलब स्कूल के अंदर कोवर्किंग स्पेस?
जी हाँ, ये माता पिता के लिए स्कूल कैंपस में ही एक कोवर्किंग कम कैफे की जगह है। इसका मतलब है कि माता पिता अपने बच्चों के करीब रहते हुए अपना काम कर सकते हैं।
वाह।
जरा सोचिए, एक जरूरी मीटिंग के बीच में ये जानना कि आपका बच्चा बस बगल के गार्डन में खेल रहा है, कितना सुकून देता होगा।
ये तो सच में कमाल का आइडिया है। ये तो स्कूल और घर के बीच की दीवारों को ही गिरा देता है।
बिल्कुल। और ये स्कूल को सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान के बजाय एक कम्युनिटी बनाने का एक सोचा समझा प्रयास है। वे सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वेबसाइट पर आर्टिसनल वर्कशॉप और नेचर डिस्कवरी डेज जैसे कार्यक्रमों का भी जिक्र है, जहां माता पिता बच्चों के साथ मिलकर गतिविधियों में भाग लेते हैं।
ठीक है, मैं इस सपने से काफी प्रभावित हूँ। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, इस सपने का हिस्सा बनने के लिए करना क्या पड़ता है और इसकी कीमत क्या है? चलिए एडमिशन और फीस की बात करते हैं।
जरूर, इनकी दाखिला प्रक्रिया भी काफी अलग और चार चरणीय है। पहले माता पिता की स्कूल के साथ एक शुरुआती बातचीत होती है, फिर उन्हें स्कूल के दर्शन से जुड़ा कुछ साहित्य पढ़ने को दिया जाता है
ताकि वो इसे ठीक से समझ सकें।
हाँ, ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि ये उनके लिए सही है। इसके बाद संस्थापकों के साथ एक खुली बातचीत होती है और फिर अंत में एडमिशन ऑफर दिया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो परिवार आ रहा है वो स्कूल की फिलॉसफी के साथ पूरी तरह से सहमत हो। वो सिर्फ फीस देने वाले क्लाइंट नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी का हिस्सा ढूंढ रहे हैं।
और फीस? क्योंकि ये सारी सुविधाएं, इतना बड़ा कैंपस, इतना व्यक्तिगत ध्यान, ये सब सस्ता तो नहीं होगा?
दो मुख्य प्रोग्राम हैं, एक है हाफ डे प्रोग्राम जो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, इसकी फीस है ₹25,000 प्रति माह।
ओके।
दूसरा है फुल डे प्रोग्राम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, जिसकी फीस ₹45,000 प्रति माह है। यह फीस क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में देनी होती है और इसमें ट्यूशन, दिन भर का ऑर्गेनिक भोजन और सारी स्टेशनरी शामिल है।
₹45,000 प्रति माह एक प्री स्कूल के लिए, ये निश्चित रूप से इसे एक बहुत ही खास वर्ग तक सीमित कर देता है। वैसे इस मॉडल के पीछे कौन लोग हैं, क्या उनका बैकग्राउंड एजुकेशन से जुड़ा है?
हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है। स्कूल के संस्थापक IIT दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें शिक्षा और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने भारत भर में 1,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों पर राज्य और केंद्र सरकारों के साथ भी काम किया है।
तो इस मॉडल के पीछे सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव और एक मजबूत विजन भी है।
बिल्कुल।
तो इस सब का क्या मतलब है? सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ है कि ये प्री स्कूल शिक्षा के लिए एक बहुत ही विशिष्ट, विचारशील और एक तरह से कहें तो बुटीक दृष्टिकोण है।
बिल्कुल। और ये हमें शिक्षा के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। क्या हम बच्चों को सिर्फ भविष्य की नौकरियों की दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम उन्हें खुश, जिज्ञासु और संवेदनशील इंसान बनाना चाहते हैं? ये मॉडल पारंपरिक अकादमिक तैयारी पर समग्र हृदय आधारित नेतृत्व और दुनिया के साथ एक गहरे जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। उनकी वेबसाइट पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बाउंड्रीलेस एजुकेशन। ये उन माता पिता को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा जो अपने बच्चों के लिए ऐसी ही सीमा रहित शिक्षा की तलाश में है।
लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा।
हाँ, और वो ये है कि ये एक बहुत ही प्रीमियम अनुभव है। स्कूल खुद को नोएडा का सबसे बड़ा प्रीमियम कैंपस कहता है और इसकी फीस इसे आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही सीमित करती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि इसका महत्व सिर्फ उन बच्चों तक सीमित नहीं है जो वहाँ पढ़ते हैं। इसका दर्शन और इसकी कार्यप्रणाली भारत में शिक्षा को लेकर चल रही एक व्यापक बातचीत के लिए बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विचार प्रस्तुत करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सीखने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं।
तो आज हमने नोएडा के द नीव स्कूल के अनूठे मॉडल की गहराई से पड़ताल की, जो प्रकृति के 5 तत्वों पर आधारित है और किताबों और स्क्रीन की बोझ से पूरी तरह मुक्त है।
हमने देखा कि कैसे उनका दर्शन, उनका पाठ्यक्रम, उनकी दिनचर्या और यहाँ तक कि माता पिता की भागीदारी, सब कुछ एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है एक सहज प्रवाह में।
तो जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है, या कहिए एक सोचने वाली बात है, जब इस तरह के किताब रहित, खुले और अनुभवात्मक माहौल में पले बड़े बच्चे, जब वो हमारे पारंपरिक प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में प्रवेश करते हैं जहाँ किताबें, संरक्षित पाठ्यक्रम और टेस्ट ही आदर्श हैं, तो उनका समायोजन कैसा होता होगा? क्या ये मजबूत नहीं उन्हें उस दुनिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है, या उनके सामने एक नई और अप्रत्याशित चुनौती पेश करती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।